ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है विशेष श्रृंखला सेवा पर्व। इसके दूसरे संस्करण में आज सुनिए आर्थिक सुधारों से विकास को मिलती नई गति। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और नरेंद्र तनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र और सरबजीत कौर।
दिस इज आकाशवाणी। द न्यू सर्विसेज डिवीजन प्रेजेंट्स स्पेशल सीरीज सेवा पर्व। लेट्स लिसन टू द सेकंड एपिसोड, ड्राइविंग ग्रोथ थ्रू बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। The participants are Sharad Kohli and Narendra Taneja, economic analysts. Moderators are Sarabjit Kaur and Subodh Mishra.
आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। आंकड़े कहते हैं कि भारत दुनिया की एकमात्र मेजर इकोनॉमी है जिसने 10 वर्षों में अपने जीडीपी को डबल किया है। बीते दशक में भारत ने 2 लाख करोड़ डॉलर अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी।
हेलो लिसनर्स एंड वेलकम टू टुडेज स्पेशल डिस्कशन। टुडेज डेलिब्रेशंस आर फोकस्ड ऑन अ थीम दैट हैज शेप्ड इंडियाज जर्नी ओवर द पास्ट डेकेड, ड्राइविंग ग्रोथ थ्रू बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।
आज के इस खास कार्यक्रम में हम आर्थिक सुधारों की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि पिछले 11 वर्षों में कौन से बड़े निर्णय हुए, उनका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा और आम नागरिक, उद्यमी और उद्योग जगत के लिए उनका क्या महत्व है।
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर मोर देन जस्ट पॉलिसीज, दे आर द बोल्ड डिसीजंस दैट रीडिफाइन हाउ अ नेशन ग्रोज, creates jobs, empowers businesses and improves the lives of its citizens. From tax reforms and digital transformation to initiatives that strengthen infrastructure, manufacturing and global trade, these bold moves are the engines that push the economy forward.
आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो जाने माने आर्थिक विश्लेषक, नरेंद्र तनेजा और शरद कोहली। नरेंद्र जी, शरद जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
धन्यवाद
शरद। द पास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन चैलेंजिंग फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एज इट रिकवर्स फ्रॉम द आफ्टरमैथ ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, द रशिया यूक्रेन वॉर, द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इंडियाज इकोनॉमी continues to break new grounds. In your view, what do you think are the broader reasons for this?
I think the last decade has been transformative as far as India is concerned. As you rightly said, COVID was a big speed breaker as far as the global economy is concerned. And the way and the character in which the Indian economy has recovered has been remarkable. I mean, it's uncomparable. And if you look at the reasons why we have galloped the way we have, I think it is the intrinsic strength of the economy. We are 140 to 145 crore people. 65% of our population is less than 35 years of age. And the main reason being the initiatives taken by the government on the economic front over the last decade. I think they have shaped the economy. They have just framed the economy in a manner that we are today growing at 7.8%. From being fragile 5 a decade ago, we are now amongst the top 4 economies. We are the 4th largest economy. So I think the agriculture sector has picked up. Manufacturing has been a great growth engine, I would say. Our export sector, with export of $825 billion plus, that's been another mainstay. Very, very robust forex reserves of about $700 billion at this point. They are the main reason. Taxpayers growing from barely 2 crores in 2014 to total number of returns being filed today are 8 to 9 crores. And this year, who knows, it might hit even 10 crores. Digitalization of the economy, the UPI, a number of factors, I would say, has shaped this economy. So from 1947 to 2014, which is about 67 odd years, we reached from zero. I start counting 1947 from zero. We reached barely 2 trillion. And from 2014 to 2025, we have doubled. So what we achieved in 67 years, we have practically achieved more than that in the last 11 years. So I think that narrates the story of how the economy has evolved over the last decade.
Sharad ji, aapne ek puri rooprekha batai. Narendra ji, aap isme kuch aur jodna chahenge?
कोई भी अर्थव्यवस्था किसी के अंदर कितना भी पोटेंशियल हो, अगर उस अर्थव्यवस्था को सही नेतृत्व नहीं मिलता है, लीडरशिप नहीं मिलती है और वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं मिलता है जिसकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आखिर वो क्या चीज थी जिसने 11 साल के अंदर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको इतना मजबूत बनाया कि आज पूरी दुनिया जो है वो उसकी नजर भारत पे है? वो थी नेतृत्व, लीडरशिप।
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स।
Recently, the government has announced next-generation GST reforms, which will come into effect on September 22nd. Let's listen to this special report on next-generation GST reforms.
In the most comprehensive overhaul of the indirect tax regime since the introduction of Goods and Services Tax, GST, in 2017, the Modi government has announced next-generation GST reforms, simplifying tax structures and offering relief across key sectors. The reforms aim to spur domestic consumption, lower compliance costs, and boost transparency in tax administration. Effective from September the 22nd, the revised GST structure will slash rates on a range of consumer goods while reorganizing the tax slab system. At the heart of the reform is a reduction in GST slabs from 4 to 2, 5% and 18%, replacing the earlier 5, 12, 18 and 28% structure. A special 40% rate will be retained for luxury and sin goods, including tobacco, high-end vehicles and aerated beverages.
Is Diwali GST reform se double bonus deshvasiyon ko milne wala hai. Hamara prayas GST ko aur aasan banane और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। इसका फायदा हर परिवार को होगा, गरीब और मिडिल क्लास को होगा, छोटे बड़े हर उद्यमी को होगा।
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन टैक्सेशन।
इन लास्ट 11 इयर्स द मोदी गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड बोल्ड एंड विजनरी रिफॉर्म्स दैट हैव स्ट्रेंथेंड इंडियाज इकोनॉमी एंड इंप्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। The Goods and Services Tax, GST, introduced in 2017, is India's most significant indirect tax reform since independence. By bringing together multiple central and state taxes into a single unified system, GST created a common national market, reduced the cascading of taxes, simplified compliance, and improved transparency. The next-gen GST reforms, which will be effective from September 22nd, are expected to spur domestic consumption, lower compliance costs, and boost transparency in tax administration. The government's support in building a startup ecosystem, along with schemes like PM Gati Shakti and the new National Logistics Policy, is enhancing infrastructure, connectivity, and logistics efficiency. These structured taxation reforms, along with the next-gen GST reforms, mark a new chapter in India's taxation journey.
शरद जी, संरचनात्मक सुधारों पर आए अगर हम, तो जीएसटी एक बहुत बड़ा कदम था। तो जीएसटी लागू होने से भारत में व्यापार करने के तरीके वो किस तरह बदले? क्या वन नेशन वन टैक्स का लक्ष्य पूरा होता हुआ दिख रहा है?
देखिए, 16-17 टैक्सेस हुआ करते थे जिनको समाहित करके एक ही टैक्स में लाया गया। मैं समझता हूं आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स का ये रिफॉर्म था। आज 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड डीलर्स हैं जीएसटी में। हमारी 1,90,000 और 2,00,000 करोड़ के बीच में मंथली कलेक्शन पहुंच चुकी है। जीएसटी 2.0 यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, जिसको प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा दिवाली पर बनानजा मिलने वाला।
So Narendra, you know, whenever we say that if you want the economy to grow, give a conducive environment to the entrepreneur, make the processes simple, let there be compliances, but yes, let there be also confidence in the entrepreneur. In the light of this, what's your view on the Insolvency and Bankruptcy Code? How do you feel this has been successful in improving India's business environment and investor confidence?
If you look at it, you know, the list of reforms that have been introduced, you know, since 2014, if you speak with entrepreneurs, you know, whether Indian or those come from abroad, that includes people, you know, who are of Indian origin and they've come here, invested money here. In fact, they list three items very prominently. Number one is this code. This has completely, fundamentally changed, for instance, the way you conduct business or you do business in the country. I'm not trying to say this absolutely everything perfect, you see. But if you ask, compare it with what we had and what we have today, we still have a few miles to go, no doubt about it, depending on the feedback that we have received. But we have come a very, very long way. And that's one of the, code is one of the items that's highlighted.
Ji, FDI ki baat karein, Sharad, kya jo hamara yahan FDI ki sthiti hai, Bharat ki vikas yatra mein, uska bahut ahem role raha hai. Bharat ka FDI dhacha kis tarah se abhi saral hua hai pichle कुछ एक दशक में
देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं और अगर मैं इसको प्रधानमंत्री जी जब मुझे याद आता है किसी भी देश में जाते हैं तो उनका एक मुख्य एजेंडा रहता है वहां के निवेशकों से बातचीत करना और उनको भारत के बारे में बताना भारत में जो बिजनेस के एनवायरमेंट है जो पूरा माहौल है उसके बारे में बताना मैं समझता हूं इस इनिशिएटिव का बहुत बड़ा रोल रहा है एफडीआई को बढ़ाने में और एफडीआई की तस्वीर ऐसे बदली है पिछले कुछ सालों में कि आपको जिन चीजों पे अप्रूवल चाहिए होता था यहां पर एफडीआई क्या होता है मैं श्रोताओं के लिए अगर सरल करके बताऊं कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आके निवेश करना चाहती है यहां आके बिजनेस करना चाहती है और ऑब्वियसली कुछ पैसा लगाना चाहती है कंपनी बनाना चाहती है ऑफिस खोलना चाहती है फैक्ट्री लगाना चाहती है कुछ भी निवेश करना चाहती है तो उसको यहां पर अप्रूवल्स चाहिए होते थे उनको सरकार की परमिशन चाहिए होती थी आज ज्यादातर सेक्टर्स में ये परमिशन ऑटोमैटिक है ऑटोमैटिक का अर्थ है कि आप सीधा आके यहां पर कंपनी बनाइए अपनी कंपनी में अपने देश के आप डायरेक्टर्स को अपने शेयर होल्डर्स को रखिए एक भारतीय डायरेक्टर आपको कंपलसरी होता है वो रखिए जिससे कि लोकल संपर्क के लिए होता है उसको प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया गया मैं इसमें एक चीज छोड़ना चाहूंगा हमारे कुछ पड़ोस के देश हैं जिनसे हमारे संबंध जो है और प्रकार के हैं उनके लिए जरूर अप्रूवल है आज भी क्योंकि पड़ोस के देश से कई बार शरारत भी हो जाती है और एफडीआई के बहाने कुछ गलत तरीके का पैसा भी भारत में आ सकता है उसके लिए भारत सरकार ने कुछ फिल्टर्स लगाए हुए हैं पर अगर हम उसको छोड़ दें जो भी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है वो लगभग सारी की सारी ऑटोमैटिक रूट पे है और आज एक साल के अंदर $80 बिलियन की अगर हम इन्वेस्टमेंट ले आते हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत जब जिस समय बात हुई थी कि चाइना का एक विकल्प बन रहा है चाइना प्लस वन पॉलिसी है तो एफडीआई का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था क्योंकि जो भी निवेशक भारत में आना चाहेगा वो पहले ये जानना चाहेगा कि क्या भारत में मुझे आने में सुविधा होगी क्या जो ईज ऑफ डूइंग की हमने बात करी बिजनेस की बात करी मुझे कितने क्लियरेंसेस लेने पड़ेंगे क्या मुझे निवेश करने के लिए भी क्लियरेंस लेना पड़ेगा तो यहां पर एफडीआई ने बहुत महत्वपूर्ण एक रोल निभाया है कि ज्यादातर चीजें अब ऑटोमेटिक है आप किसी भी प्रकार का भारत में बिजनेस करना चाहते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग में हो आप ट्रेडिंग में हो आप सर्विसेज देना चाहते हैं कुछ एक सर्विसेज को हम छोड़ दें और कुछ एक देश को हम छोड़ दें पड़ोस के तो लगभग पूरी दुनिया के लिए आज हमारा बाजार खुला हुआ है और मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए बताऊं कि क्यों एफडीआई के लोग इतना ज्यादा भारत की तरफ देख रहे हैं क्योंकि हमारी जो मिडिल क्लास है वो इतना बड़ा बाजार बन चुकी है 40 करोड़ की मिडिल क्लास उसमें नियो मिडिल क्लास 25 करोड़ जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से लोग बाहर आए हैं मेरे अनुमान से एक अर्थशास्त्री होने के नाते 65-70 करोड़ की इस समय हमारे यहां मिडिल क्लास हो चुकी है तो इतनी बड़ी मिडिल क्लास मैं समझता हूं किसी भी निवेशक के लिए बहुत ही लुभावनी बन जाती है
भारत के टैक्स सिस्टम में फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत थी आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और वो है फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब टैक्स पेयर को उचित विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है वो आगे बढ़ता है तो देश का भी विकास होता है देश भी आगे बढ़ता है।
financial and digital reforms.
India's drive towards financial inclusion and a robust digital economy has been dramatically accelerated over the past 11 years. Anchored by flagship initiatives like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, which created over 55 crore bank accounts, the government prioritized universal access to banking, insurance, and financial services for all citizens, especially the rural and marginalized. The innovative Jam Trinity, Jan Dhan, Aadhaar, and Mobile, facilitated the seamless delivery of public benefits by enabling direct benefit transfers, reducing leakage and corruption. The schemes like Pradhan Mantri Mudra Yojana have been instrumental in bringing the change in the lives of millions of citizens. Collateral-free Mudra loans worth over 33 lakh crore rupees have been disbursed by the Modi government. Around 70% of the beneficiaries of the Mudra loans are women, and a majority of them are from the marginalized communities. The Pradhan Mantri Vishwakarma scheme and Stand Up India have also provided collateral-free loans, toolkits and skill upgrades, especially for artisans and underrepresented groups. By promoting transparency, inclusivity and digital literacy, India has now emerged as a global leader in digital payments and financial empowerment.
Taking the discussion further from the aspects of FDI to the common Indian citizen here, let's talk about the latest and very prevalent digital revolution, Narendra. What's your view about the reforms like the UPI and the Bheem app? How have these movements empowered the ordinary citizen and brought about financial inclusion in the true sense of the word?
You go today anywhere, even the people who can't really spell world digital are using it. The people who can't afford to buy any expensive equipment, telecom equipment, I'm referring of course to phone or to smartphone, they are using it. India is today the only large economy in the world where every single person from north to south to east to west has been digitally empowered. For instance, UPI is a kind of mantra for ordinary people. That means empowerment.
Sharad ji, Digital India ne Bharat ko kitna batla hai aur khas taur par agar hum Jan Dhan accounts, Aadhaar, mobile, in jaisi cheezon par agar hum gaur kare aur us nazariye se dekhe to.
Dekhiye, isko Jam Trinity kehte hain. Aapne jo teen cheezon ka naam liya, Jan Dhan, Aadhaar aur mobile. Main samajhta hu Bharat ki puri aarthik tasveer badal chuki hai isse. 25 lakh crore महीने के यूपीआई ट्रांजैक्शंस इस समय हो रहे हैं. 70 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शंस, यानी कि महीने के हम 2000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं. ये आपको वॉल्यूम बताता है कि हम कहां जा रहे हैं. एक जमाना था, आपको याद होगा, मेरे ख्याल श्रोता इससे रिलेट कर पाएंगे, एक आप चेक इशू करते थे इंटर स्टेट, 15 दिन एक महीने बैंक के चक्कर लगाते रहते थे, रोज अपनी खोल के स्टेटमेंट, बैंक से खोल के स्टेटमेंट का, तब तो आपको जाके काउंटर पे लाइन लगानी पड़ती थी. आज आप पेमेंट करते हैं 3 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल में से निकल के, वॉलेट में से निकल के वो दूसरे के यहां पहुंच जाती है, चाहे वो निजी वॉलेट हो चाहे वो भीम हो. इतने प्लेटफॉर्म्स है. यूपीआई ने तो मैं इसको एक उत्कृष्ट पेमेंट इंटरफेस बोलता हूं, जबकि इसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, पर मैं इसको उपयोगी या उत्कृष्ट पेमेंट इंटरफेस मैंने इसका नाम रखा है.
आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है, और ज्यादातर देश में डिजिटल इंडिया यूपीआई के प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है. यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है. इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है. डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है. जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति जैम, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें पहुंचा पा रहे हैं. बीते 7-8 वर्षों का अनुभव मेरा विश्वास और मजबूत करता है, मेरा भरोसा बढ़ता जा रहा है.
Reforms in manufacturing sector.
India's manufacturing sector has witnessed significant growth in the last 11 years
At the heart of this is Make in India campaign, which was launched in 2014 with the aim of transforming India into a global manufacturing hub. Today, the country has made significant progress in manufacturing. India is now the world's second largest mobile phone manufacturer. The country has also set an ambitious target of producing indigenous semiconductor chips with the launch of India Semiconductor Mission. By the end of this year, first Made in India semiconductor chip will be available in the market. With the improvements in ease of doing business and procedural simplifications, India has been able to attract both domestic and international investments. Major programs like Production Linked Incentive, that is PLI scheme, PM Gati Shakti, the National Logistic Policy, Digital India, Next Generation GST reforms, and Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana are further boosting the manufacturing sector. Strategic Free Trade Agreement, that is FTA, have also expanded India's access to global markets. Schemes like One District, One Product, that is ODOP, are promoting local enterprises, preserving cultural heritage while boosting rural economies. The programs and the schemes are in sync with national goal of becoming self-reliant and a $5 trillion economy in the coming years. It fuels the Make in India movement by reviving domestic manufacturing at scale. It powers Digital India by driving local production of mobile phones and electronics, making technology more accessible and affordable. And it aligns closely with India Semiconductor Mission, which, backed by a 76,000 crore rupees package, aims to provide financial support for investment in semiconductor fabrication, display manufacturing and chip design to strengthen India's integration into global electronics value chains.
Narendra, you know, from a dependent economy, if I may say so, into a self-reliant and globally competitive powerhouse, the country has seen a journey which has been long and arduous. Amidst this, the Make in India flagship initiative aims at transforming India into a global manufacturing hub. In fact, now we are at the threshold of making our own semiconductor chip. So how do you view this initiative, that is the Make in India initiative, fit into India's broader goal of economic growth and self-reliance?
If you listen to the Prime Minister's speech, the Red Fort, the last 15th of August, focus on two things. Number one was Prime Minister talked about self-reliance. You see, means Atmanirbharata. It does mean, in a narrow sense, it does mean that, look, we are not going to interact with the world, we're going to shut all the windows and doors, we are not going to buy anything from, but no such thing. It means that wherever we have the domestic or local potential, or wherever, for instance, we can go for innovation, research and development within our own country, or wherever we need to buy assets, it can be oil, it can be gas, it can be gold, it can be uranium, overseas, we'll go and acquire it. In order to be self-reliant, because even if it is in some other geography, it belongs to you. So you are self-reliant. China has done the same. Now, but increasingly, as you know now, in what is Prime Minister is focusing on that and India is focusing on that. On the one hand, we want to be self-reliant, of course, but at the same time, what is our goal? We want to be a big pole on the global geopolitical landscape.
Sharad, iske saath kya bahut sankshep mein PLI aur Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana ke role ke baare mein batana chahenge?
Bilkul, ye dekhiye, ye Make in India से ही संबंध रखती है सीधी सीधी और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स इससे जो रोजगार सृजन हुआ है पिछले कुछ सालों में मैं समझता हूं वो उल्लेखनीय है पहली बात तो ये है दूसरा विकसित भारत रोजगार योजना की हम बात करें तो बेरोजगारी इस देश की आजादी के बाद से एक समस्या रही है सरकार हर किसी को रोजगार नहीं दे सकती सरकार एक प्लेटफॉर्म बना सकती है एक माहौल बना सकती है जहां आपको रोजगार उत्पन्न किए जाएं तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने उद्योगों को और उद्योगपतियों को चाहे वो एमएसएमईज हों चाहे वो बड़े उद्योग हों उनको जब इस प्रकार का इंसेंटिव दिया जाता है तो लाजमी बात है इसके आकर्षण से नए रोजगार पैदा करने की कोशिश करते हैं उत्पादन बढ़ता है सेल्स बढ़ता है रेवेन्यू बढ़ता है कुल मिला के देखें तो हम देश की उन्नति में और देश में रोजगार उत्पन्न करने में पीएलआई और प्रधानमंत्री विकसित भारत दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है और रहा है नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा कि ये ऑनगोइंग योजना है ये चल रही है और आने वाले समय में आपको ये और ज्यादा फलती फूलती दिखेगी और ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति इसका लाभ उठाते दिखाई देंगे
भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को सात बड़ी कंपनियों में बदला, डीआरडीओ और एचएएल को सशक्त किया, यूपी और तमिलनाडु में दो बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए, ऐसे अनेक निर्णयों ने डिफेंस सेक्टर को नई ऊर्जा से भर दिया।
एनर्जी रिफॉर्म्स।
नरेंद्र जी, अब हम ऊर्जा क्षेत्र पर गौर करें तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की यात्रा कितनी सशक्त हुई है पिछले एक दशक में?
अब देखिए, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा है। अगर हमको आर्थिक आजादी चाहिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तो बिना एनर्जी इंडिपेंडेंस के वो मिल नहीं पाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है, बुनियाद है जिस पर अर्थव्यवस्था खड़ी की जाती है, वो ऊर्जा होती है। 2014 के बाद से हमने देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको आम भाषा में या ग्रीन एनर्जी बोला जाता है, उस पर ज्यादा फोकस दिया। उसके मुख्यतः दो कारण रहे। एक तो यह था कि भाई, जिससे कि हमारी आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। और अगर आप यहां पर सोलर पावर को देखते हैं, सौर ऊर्जा को देखते हैं, तो ईश्वर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। सोलर रेडिएशन जिसको बोलते हैं, जितना भारत में है वो बहुत कम देशों में इतना सोलर रेडिएशन आपको मिलता है। तो कुल मिला के एक रणनीति के तहत बहुत ही सोची समझी, वैज्ञानिक रूप से बनाई रणनीति की तरफ उस दिशा में चलने के कदम करे गए। और जब पेरिस में क्लाइमेट समिट हुआ और उसके बाद जितने भी हुए, यूके में हुए और उसके बाद दुबई में, हमारा कमिटमेंट जो बरकरार रहा। और आज स्थिति यह है कि लगभग जितनी भी हम बिजली का निर्माण देश में कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अब जो है एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जा रही है, तो उसमें हम देख रहे हैं, तो हमारा आज की तारीख में 45% से ज्यादा बिजली हम रिन्यूएबल से ला रहे हैं। और ये जो टारगेट विश्व के पटल पर रखा था कि 2030 तक हम उसको अचीव करेंगे, हमने काफी हद तक उसको अचीव कर लिया है। आप सौर ऊर्जा के अंदर देखिए, सौर ऊर्जा में अभी तक हमारा जो एक एरिया था जिसमें ये था कि जो पैनल्स होते हैं, सेल्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो हमको आयात करने पड़ते हैं। आज भी हम भारी मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन अब दो बड़ी गीगा फैक्ट्री लग रही है, दो और जो है वो उनका प्लान बन चुका है, उसका भी जल्दी हो जाएगा। लिहाजा ये हुआ कि सौर ऊर्जा के मसले में और पवन ऊर्जा के मसले में और काफी हद तक जो जल ऊर्जा हाइड्रो पावर है, उसके अंदर हम काफी रूप से जो है इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और इसकी इतनी बड़ी भूमिका है कि आज वो है जिसमें हमारी विदेशों पर निर्भरता हम कम कर रहे हैं, और इसके अलावा जहां पहले बिजली नहीं पहुंचती थी वहां पहुंच रही है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि पूरे दूर दराज के इलाकों में, जहां पे मान लिया ग्रिड पहुंचता है लेकिन इतनी आसानी से नहीं पहुंचता, वहां पे सोलर पैनल लगा करके सोलर रिपब्लिक्स एक तरीके के बनाए जा रहे हैं। रिपब्लिक मैं इसलिए कह रहा हूं, वो गणतंत्र है, क्योंकि अगर बाहर से कुछ ना भी मिले, अपनी बिजली का निर्माण करेंगे, अपने छोटे छोटे कारखाने लगाएंगे, अपने रोजगार पैदा करेंगे और अपने को एम्पावर करेंगे, ऑटोनोमस होंगे। ये सिर्फ सौर ऊर्जा कर सकती है। अब जो है जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर बोलते हैं, सरकार का पूरा फोकस डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर पर है। तो इसकी नतीजा ये है कि भारत में तो हम इस प्रगति को देख ही रहे हैं, बल्कि तमाम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पूरी दुनिया को हमने जो कुछ सीखा है या जो करा है, उसका हम निर्यात भी कर रहे हैं।
साथियों, बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है, खास तौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर। भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब 70 बिलियन डॉलर यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है।
बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स।
Over the past decade, the government has undertaken wide-ranging reforms to strengthen the banking sector, ensuring stability, transparency, and inclusive growth. Recognizing the critical role of banks in supporting business and employee welfare, a comprehensive 4Rs strategy was launched in 2015, recognizing NPAs transparently, resolution and recovery, recapitalization of public sector banks, and reforms in the financial system. This strategy has not only addressed structural challenges, but also laid the foundation for resilient, technology-driven, and citizen-centric banking. To resolve legacy-stressed assets, the National Asset Reconstruction Company Limited, that is NARCL, was launched in 2021. Also, the government strengthened legal and institutional frameworks through the Insolvency and Bankruptcy Code, amendments in the SARFAESI Act, and bolstering of debt recovery tribunals, with banks setting up dedicated stressed asset management verticals to improve recoveries.
These reforms, coupled with sustained recapitalization efforts, have strengthened the public sector banks.
Sharad, in the making of a strong and resilient economy, the banking sector has a very important role to play. So in your view, what is the role of this merger of state-owned banks into a larger, stronger and more efficient entity that we see, you know, these banking reforms? How have they contributed to improve the financial stability of the country?
See, the merger of various banks was saving of the resources. From the time when the banks were nationalized way back, I think we've come a long way. There was phone banking, as it was called, because there were loans given recklessly. I think today the banks have become very selective. Today the banks have become very careful. The due diligence is being done very, very effectively. And the merger has resulted in saving of the cost. If you have five banks working together who are giving similar services. So merging helps government save resources. Merging helps in consolidation of the banking services under one brand name, one roof. And I think today public sector banks are functioning shoulder to shoulder with some very tough competition from the private sector bank, and they are doing very, very well. And the best part of banking, which I found, has been the cleansing of the bad debts, the cleansing of the NPAs. I think their remarkable progress, as we already spoke about the insolvency and banking code, the IBC in the beginning, but then that combined with banking reforms which have happened, today very proudly we can say that our public sector banks are not just cost centers, but they are making handsome profits and they are doing very well for themselves, the industry and people of the country.
Sharad, there's no denying that we are on the path of becoming the third largest economy. And before we wrap up today's discussion, what's your expert comment on this? How is our pace towards becoming a Viksit Bharat?
Well, I think the pace is fantastic at this point of time. And this is evident from last quarter's GDP numbers, 7.8%. It came as a very pleasant surprise to the whole country for that matter.
Varinder ji, isi par Viksit Bharat ke sapne ko saakar karne ki disha mein hum kitna safar tay kar rahe hain?
Dekhiye, bahut acha aapne prashn kiya. Mere saathi ne ek baat kahi ke hamare GDP ki. Dekhiye, jo GDP jis hisab se kara jata hai, uski paribhasha, uska vigyan kafi had tak paschim mein viksit hua. Aur usi hisab se Bharat ki arthvyavastha ko bhi dekha jata hai, jabki hamari arthvyavastha kai maam में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग है। खैर, अगर हम जो आम तौर से माना था उसको भी लेकर के देखें, हम नॉमिनल बेसिस पे हो सकता है 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो, लेकिन पीपीपी पे परचेजिंग पावर पैरिटी पे अगर आप देखते हैं तो हम ऑलरेडी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हैं। हम 14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं आज की तारीख में। मेरा मानना है कि जो विकसित भारत का हमारा जो सपना है कि 2047 तक हम विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए, विकसित भारत बन जाए, मुझे लगता है हम उससे पहले वहां पहुंचेंगे।
बैंकिंग क्षेत्र का क्या हाल था? न विकास होता था, न विस्तार होता था, न विश्वास बढ़ता था। हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे। हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेक विध रिफॉर्म्स किए और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इन्हीं गुनी मजबूत बैंकें हैं उसमें अपना स्थान बनाया है। जब बैंक मजबूत होती है ना, तब फॉर्मल इकोनॉमी की ताकत भी बढ़ती है। जब बैंक की व्यवस्था बन जाती है, जब सामान्य गरीब खास करके मध्यम वर्ग के परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है। मुझे खुशी है मेरे रेहड़ी पटरी वाले लाखों भाई बहन आज बैंक से साथ जुड़ करके अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हैं।
तो श्रोताओं, आपने सुना कि किस तरह साहसिक आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
यस इंडीड सुबोध, कैटेगराइज्ड बाय यंग डेमोग्राफिक एज एंड सस्टेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंडिया इज रीशेपिंग इट्स रोल इन ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। वी इंडीड हैड अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन टुडे विद शरद कोहली एंड नरेंद्र तनेजा।
दोनों को धन्यवाद।
थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच।
विशेष श्रृंखला सेवा पर्व के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे आर्थिक सुधारों से विकास को मिलती नई गति। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और नरेंद्र तनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र और सरबजीत कौर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
You were listening to the second episode of the special series Seva Parv, Driving Growth Through Bold Economic Reforms. The participants were Sharad Kohli and Narendra Taneja, economic analysts. Moderators were Sarabjit Kaur and Subodh Mishra. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.